आठ निर्बंध की ओर महाराज जी बढ़ेंगे। निर्वाण को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। निर्वाण यानी मुक्ति कहलाती 3 माह 10 दिन का अपना जो बंधन था वह निर्बंधन निर्बंध होने जा रहे हैं। मुनिराज बंधन को स्वीकारते हुए भी वो निर्बंध ही रहते, आपके कोई बंधन में नहीं रहे, स्वयं के बंधन में जरूर रहे लेकिन श्रावकों के बंधन में बांध करके वे नहीं रहे। आपसे निर्बंध रहते हुए 3 महीने 10 दिन का यह चातुर्मास आनंद संपन्न किया। उसके साथ खूब प्रभावना भी रही, भावना भी रही, प्रभावना भी रही। महाराज जी की अपनी साधना बहुत अच्छी तरह से रही। अपन भी देखते रहे कि बहुत अच्छी तरह से यह चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ कि होने जा रहा है, करे कि नहीं, संपन्न पूर्ण आनंद संपन्न करे कि और चलाए। आपके कहने से कोई रुकेगा नहीं। महावीर को अगर आप कह दे आपकी बातें, महावीर भगवान अगर मान ले, आज के दिन मोक्ष जाते ही नहीं थे। आज भी हमारे समूह शरण में, आज भी उनके समूह शरण में हम रहते, लेकिन आज उनके प्रतिकृति के रूप में महावीर स्वामी का समूह शरण बना के यहाँ अपन ने रखा है। तो मन से हमने उन्हें जाने नहीं दिया, वो चले तो गए लेकिन अपन ने जाने नहीं दिया। आपको भी यही काम करना है। महाराज जी भले ही विसर्जन करें, निष्ठापन करें, आपकी स्थापना बनी रहे। आपकी स्थापना हो गई, वह जन्म जन्मांतर तक उसे विसर्जन होने नहीं देना। आपको विसर्जन नहीं करना, महाराज जी अपना कार्य आगे करेंगे। हम सब लोग मिल करके महाराज जी का निष्ठापन हो चुका है। दीपावली का धमाका हो गया है। अब महाराज निर्बंध है सिर्फ उपदेश के लिए। स्थापना के समय यहाँ पूछा जाता है कि इतने इतने दिशाओं में अपन रहेंगे, उसके अंदर अपने आचरण के अनुसार अनुकूलता बनी रहेगी। इतने उन्होंने सीमा बनाए रखी थी, उस सीमा को निर्वाण भक्ति पढ़ते हुए सवेरे ही पूर्ण किया। प्रवचन सुन के जाना, कोई जाएंगे नहीं। निर्वाण उत्सव है, अपन भगवान महावीर स्वामी का जो आज मोक्ष प्राप्त हुआ वह उपदेश सुनेंगे। और एक विशेष सूचना है, जिन लोगों ने पिंची परिवर्तन का जो कार्ड फॉर्म लिया है उसे आज शाम तक दे दे, ताकि उसको देखने के लिए भी अपने को अनुकूलता रहेगी। बाद में इन मौके पे लाग के देने पर किसको पीछे देना है, किससे दिलवाना है, ये अपने को पता नहीं चलता। पहले ही आज शाम तक पिंची परिवर्तन के कार्ड फॉर्म भर करके ला कर देना। जिन्होंने नहीं भरा हो आज भी ले जाइए, शाम तक ला के दे दीजिए। जितना आपसे बन सकता उतना ही नियम लेना, कोई खाली हाथ न रहे। आज निर्वाण उत्सव है, आज के दिन नियम ले लेना। छोटा सा भी नियम बनेगा उतना ही ले लेने का। अगर पुरुषों का नहीं बनता है, पुरुष जितना बनेगा उतना ही भरवा देना, और महिला अपना जितना बनेगा उतना भर करके देना। इसलिए अपन ने कह दिया किसी को दिखाना नहीं, सिर्फ महाराज जी को दिखाना। महाराज जी देखकर आपको पुनः लौटा देंगे, आपको ही मालूम रहेगा और महाराज जी लोगों को मालूम रहेगा। आपसे जितना बनता उतना नियम आज संकल्प ले लेना। बता दिया है कि महाराज जी के हाथ में ला के दे देना। फार्म जिन्होंने भरा है महाराज जी के हाथ में शाम तक ला के दे देना, विश्व सागर जी के हाथ में। तो आज हाँ, पहला वाला भी जो अष्टमूल गुण वाला है, पर्युषण पर्व में दिया था, वो चाहे तो वो भी भर सकते। पिंची परिवर्तन के लिए चाहे तो पिंची परिवर्तन के लिए भी नामांकन कर सकते हैं आज के दिन। तो निर्वाण महामहोत्सव है। आज हम सब लोग मिलकर के महाराज जी से निवेदन करेंगे। क्या मोक्ष लक्ष्मी महावीर स्वामी ने किस तरह से प्राप्त की है, हमें भी प्राप्त करना, हमारा भी यही उद्देश्य है। फिर निर्माण उत्सव मनाते मनाते रहेंगे तो भी कुछ होगा नहीं, मनाते हुए हमें भी निर्वाण को प्राप्त करना है। इस मनोभावना के साथ हम सब लोग मिलकर के महाराज जी से निवेदन करेंगे आज का यह निर्वाण उत्सव महोत्सव पर आप अपना उपदेश हम सब के लिए दे दे रहे हमें प्राप्त हो, इसी मनोभावना के साथ बोले परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की।
शांति से बैठ करके भगवान महावीर को आज के दिन निर्वाण की प्राप्ति जो हुई है, मोक्ष जो उन्होंने प्राप्त किया था, उस संबंध में बहुत अच्छा प्रवचन सुनेंगे। प्रवचन छोड़कर जाना नहीं कहीं भी और चंचल नहीं रहना। महावीर भगवान शुक्ल ध्यान में लीन थे, उससे भी ज्यादा एकाग्रता यहाँ रहे। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। प्रत्येक आत्मा संसार में जन्म लेता है तो मृत्यु को भी प्राप्त होता है, यह साधारण सा नियम है। हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु भी होती है, मरण करना पड़ता है। मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म लेने की ओर ही हम चले जाते हैं और जन्म लेने के चार स्थान हुआ करते हैं, नरक गति, देव गति, तिरंश गति और मनुष्य गति। जन्म भी चार गतियों में होता है तो मरण भी चार गतियों में ही शरीरधारी जीव को होता है, किंतु जो जीव शरीरधारी नहीं होता उसके लिए जन्म मरण भी नहीं होता। ऐसे कौन हैं? सिद्ध भगवान हैं। आज भगवान महावीर को निर्वाण की उपलब्धि हो गई। चार गतियों से हमेशा हमेशा के लिए वो यहां से चले गए अपने बीच में से। एक दिन हमें भी ऐसा ही जाना है, कहीं रहना है। मानव में के कर्जे का ही तरगा खाते हुए हर साल यही आनंद आ रहा है और यही रहे, ऐसे कुछ भाव होते हैं क्या? इससे भी अच्छे अच्छे तर्क और कर्जे का ही वहां मोक्ष में। उसी को भगवान महावीर को पाना था जो शाश्वत सुख दे सकते थे। ऐसे आत्मा के अनंत गुण जिनका एक एक अनुभव प्रति क्षण प्रति समय करते हुए उसमें अनंत सुख की अनुभूति करने के लिए उस अवस्था को प्राप्त हो गए जो अवस्था उन्हें चाहिए था, आज के दिन प्राप्त हुआ। उनका निर्वाण का स्थान बिहार प्रांत का पावापुरी का सरोवर रहा, जिस सरोवर के बीच में जो एक खंड पाषाण था उसके ऊपर जाकर के विराजमान हो गए थे। बीच में कोई जा नहीं सकता था, श्रावक नहीं जा सकते थे, कोई प्राणी नहीं जा सकता था, ऐसा स्थान उन्होंने चुन लिया। मोक्ष जाते समय विघ्न बाधाएं उपस्थित तो तीर्थंकर को नहीं हो सकते, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान के पश्चात किसी भी प्रकार का उपसर्ग आदि नहीं होता, बाधा नहीं हो सकती। जैसे आप सामायिक में बैठ जाते हैं तो तीन चार मच्छर काटने के लिए आ ही जाते हैं, कोई भी ना आए तो वो तो कम से कम आ ही जाते हैं। पर महावीर भगवान केवल ज्ञानी थे, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे और सरोवर के मध्य उस खंड पाषाण पर बैठ करके अंतिम जो दो शुक्ल ध्यान बच गए थे करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो दो शुक्ल ध्यानों की आवश्यकता होती है, पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क नाम के दो शुक्ल ध्यान है। दो शुक्ल ध्यानों के माध्यम से उन्होंने घाती कर्मों को नष्ट किया और इसके पश्चात उन्होंने लगभग 30 साल तक 42 साल की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और टोटल उनकी आयु थी 72 वर्ष की। आज के दिन पूरे हो गए थे 72 वर्ष। आज उनका मरण का दिन था। ऐसा मरण जिस मरण के करने के बाद अब बार बार जन्म मरण करने की आवश्यकता उनको नहीं थी। ऐसा मरण सर्वोत्कृष्ट मरण माना जाता है जिसका नाम पंडित पंडित मरण कहा जाता है। आज मरण किया था, कौन सा मरण? पंडित पंडित मरण। पंडित पंडित मरण को ही निर्वाण कहते हैं, लेकिन पंडित मरण को निर्वाण नहीं कहते। निर्वाण का तात्पर्य केवल आत्मा को बचा करके सारे परद्रव्यों को विसर्जित करना, इसको निर्वाण कहते हैं। सारे परभावों को और परद्रव्यों को विसर्जित करके केवल आत्मा को बचा लेना, इसका नाम निर्वाण है। परद्रव्य उनके पास क्या थे? कुछ भी तो नहीं थे। छोड़ने के लिए जब उन्होंने घर ही त्याग दिया था, उनके पास पर वस्तु कोई नहीं थी, लेकिन पर वस्तु जो अनादिकाल से इस आत्मा के साथ निरंतर चलते हैं, पर्वों में आते हैं, पर्वों में जाते ही ग्रहण कर लेता है, ऐसे पर वस्तु उनके पास दो थे, एक शरीर और दूसरा आघाती कर्म, घाती कर्म, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म के दो हिस्से, एक घाती कर्म चार और आघाती कर्म चार। ये आठ कर्मों से बांध करके जीव निरंतर चलता रहता है। आप लोगों के पास अभी कितने कर्म मालूम? ये सब कहां मालूम अपने को? अपने को डिबिया में कर्जे का ही कितने हैं और तर्क कितने हैं, खाना कैसे और सोना कैसे, दुकान कैसे करना और मकान कैसे रखना, यही तो मालूम है। संसार जीवन जीने का ढंग भर अपने को मालूम है, अपने आत्मा के संबंध में कुछ भी हमें ज्ञान नहीं है। ऐसा जीवन चल रहा है, इसी का नाम दुखमय जीवन। इस दुखमय जीवन से मुक्त होने के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्राणी जब तक आत्मा का चिंतन नहीं करता, संसार से मुक्त नहीं हो सकता। महावीर भगवान जन्म के पश्चात लगभग 30 साल तक घर में रहे। राजा सिद्धार्थ और त्रिशला उनके माता पिता थे, धन्य थे वो। ऐसे तीर्थंकर महापुरुष को जन्म देने वाले सिद्धार्थ और त्रिशला देवी, ये भी भव्य थे, मोक्षगामी जीव थे। उन्होंने 13वीं स्वर्ग से आने वाले उस भव्य आत्मा को जन्म दिया, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके 13वें स्वर्ग में चले गए थे और वहां से आकर के इस भारत भूमि पर तीर्थंकर बनने का पुण्य प्राप्त किया था। पूर्व भव में किया हुआ पुण्य पर भव में जब फल देता है, तब वह पुण्य का फल स्व के लिए और पर के लिए दोनों के लिए वह उपकारी बन जाता है। आज हम धर्म की बातें जो सुन रहे हैं, ये सब भगवान महावीर की देन है। उन्होंने जो उपदेश दिया था, उसके फल स्वरूप आज हम वो सुन रहे हैं उपदेश, और ये लगातार 18,000 वर्ष तक अभी भविष्य में ये उपदेश जीवित रहेगा। मुनि, श्रावक, श्राविका और आरिका, ये चतुर्विध संघ कहलाता है। यह अभी 18,500 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात न जिनवानी रहेगी, न श्रावक रहेंगे, न मुनि रहेंगे, न आरिका रहेगी, कोई नहीं रहेगा, यानी धर्मात्मा नहीं रहेगा। आदमी नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, आदमी रहेगा, मनुष्य रहेंगे, त्रिंच रहेंगे, लेकिन वे धर्म से खाली रहेंगे। धर्मात्मा कोई एक भी दिखाई नहीं देगा। इसी को कहते हैं छठा काल। अभी पंचम काल चल रहा है, छठा काल आने वाला है। इस छठे काल में तो मनुष्य तो रहेंगे, लेकिन पशुवत जीवन जीने वाले सारे के सारे मुनि रहेंगे। महाराज, मुनि रहेंगे तो फिर धर्म तो रहना ही चाहिए। ऐसे मुनि नहीं, सभी दिगंबर। समझ में आया? कैसे रहेंगे आदमी? आदिवासी टाइप के लोग रहेंगे, दिगंबर रहेंगे, लेकिन दिगंबर मुनि नहीं रहेंगे। मुनि आचरण का नाम है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को धारण करने का नाम मुनि है। उसमें से एक भी मुनि नहीं रहेगा, सभी दिगंबर रहेंगे, मुनि तो एक एक के पास भी नहीं रहेगा। उनके पास सम्यक दर्शन नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, चारित्र नहीं रहेगा। आदमी रहेगा, पशु रहेंगे, पेड़ पौधे सब कम हो जाएंगे, वनस्पतियां नहीं रहेगी, सूखी धरती, एकाध वनस्पति वहां एक, यहां एक, यहां एक, वहां एक, मिट्टी खाएंगे, मृदु मिट्टी चुन चुन करके खाएंगे जहां अच्छी मिलती है, मिट्टी उनका आहार रहेगा। वनस्पति के पत्ते तोड़कर मनुष्य खाएगा। जब तक वह समय नहीं आएगा तब तक धर्मात्मा और धर्म रहेगा। जब तक धर्म और धर्मात्मा रहेगा तब तक यह दुनिया सुखी रहेगी, हरा भरा रहेगा, नागरिकता रहेगी, मानव सभ्यता रहेगी। मानव सभ्यता, नागरिकता जब पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पुनः एक बार ये सारे मानव आदिवासी बनेंगे, आदिवासी के रूप में दिखाई देंगे, उनको कुछ भी पता नहीं। दिन आएंगे जाएंगे, निर्वाण दिन आएगा, हर साल आएगा, उनको भी 21,000 वर्ष तक हर साल दीपावली आएगी, लेकिन खाने को कर्जी का ही तरगा नहीं मिलेंगे। वहां कहां मिलेंगे? वनस्पति नहीं है। देखो, कर्जी का ही तरगा के लिए गेहूं चाहिए और शक्कर चाहिए, ये वनस्पति उगेंगे क्या? शक्कर किससे बनता है? गन्ने से। तरगा किससे बनता है? हरभरा से। हरभरा नहीं है उगेगा, गन्ने के पेड़ नहीं उगेंगे, तो रहेगा क्या? एक धतूरे का पेड़, धतूरा विषैला वनस्पति मात्र उगता है, उसके पत्ते को खा खा करके क्रमशः पचाएंगे, वो मिट्टी खाएंगे, वो वनस्पति खाएंगे, धान्य कोई भी उगने वाला नहीं, और फिर भी आदमी जीवित रहता है। देखिए आप, मिट्टी खाकर के भी जीवन व्यतीत करेगा, और उनकी आयु अधिक से अधिक 16 से लेकर के 20 वर्ष की रहेगी, 16 से लेकर 20 वर्ष, 20 वर्ष में खत्म जीवन। उसी में बाल्यावस्था, उसी में कुमारावस्था, उसी में युवावस्था, उसी में प्रौढ़ावस्था, उसी में वृद्धावस्था, 5 अवस्था पार करेंगे। आज तो 20 वर्ष की उम्र में हम युवावस्था तक पहुंच जाते हैं, किंतु उस काल में जो परिस्थिति रहेगी, वो केवल 20 साल के अंदर सारी 5 अवस्थाओं को पार करके मरण को प्राप्त करेंगे। ये भयंकर जो काल रहेगा उसका नाम है छठा काल। अभी 18,500 वर्ष शेष है जब तक धर्म रहेगा, उसके पश्चात धर्म डूब जाएगा। जिस दिन धर्म का अभाव होगा इस धरती से, उस दिन सारे मनुष्य आदिवासी बनेंगे। और परिकल्पना ये करना है कि जब तक आदिवासी नहीं बनेंगे सारे दुनिया के लोग, तब तक समझ लेना कहीं न कहीं धर्मात्मा है और धर्म बचा हुआ है। और एक लक्षण और बता दिया है, धर्म रहने का, धर्म होने का संकेत वो ये है। धर्म होने का संकेत ये है कि जब तक धर्म रहेगा इस धरती पर आग जलेगी, अग्नि रहेगी। अग्नि और धर्म इन दोनों का गठबंधन है। धरती पर जब तक अग्नि रहेगी तब तक धर्म रहेगा, जब तक धर्म रहेगा तब तक अग्नि रहेगी। धर्म का अभाव हो जाए जिस दिन, उसी दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, आग नहीं जला सकेंगे आप, कुछ भी खाना नहीं पका सकेंगे। अब पकाने के लिए है भी क्या, न धान्य है, न साग है, न सब्जी है, कुछ भी नहीं। और वो जो वनस्पति हैं, उनको ज्यों का त्यों तोड़ करके पत्ते खाएंगे, और जो मिट्टी है उसको ज्यों का त्यों, मिट्टी अच्छी लगती है तो खाएंगे, नहीं लगती है तो थूक देंगे। कैसा लगता है ये काल, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना। इसलिए महावीर ने कहा, यदि उस काल में जन्म आप लेना नहीं चाहते तो किसकी शरण में जाना? धर्म की शरण में जाना। आपके अंदर धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। सम्यक दर्शन से भी यदि आप मरण करके सम्यक्तों को साथ ले जाकर के परभव में जन्म लेते हैं तो आप वहीं जन्म लेंगे जहां पर अग्नि है, यानी उस देश में, जहां पर अग्नि है उस देश में जन्म लेंगे, और वह देश धर्म वाला देश रहेगा। और जहां अग्नि नहीं है, जहां अग्नि नहीं है वहां अगर जन्म ले रहे हैं तो समझ लेना कौन सा काल है, वो छठा काल। क्या करना चाहेंगे, मनुष्य पर्याय को सुधारना चाहेंगे कि बिगाड़ना चाहेंगे? कहां भटक रहे हैं आप लोग, धर्म ही शरण है। भविष्य को सुखमय बनाना चाहते हैं तो धर्म को ज्यादा समझो, ज्यादा विचार करो, ज्यादा चिंतन करो, ज्यादा उसकी ओर ध्यान दो, उसको आत्मा में धारण करने का प्रयत्न करो। क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? ऊंग रहे हैं, बहुत उदासीनता है। दक्षिण में धर्म कहते बहुत उदासीनता, शायद यही लोग छठे काल में जन्म लेंगे ऐसा मुझे लगता है। ये ज्यों कहते हूँ ट्रांसफर यही होने वाले, यही मरेंगे यही पैदा होंगे। सामने छठा काल आ रहा है, उसमें जन्म लेना चाहो तो धर्म से दूर रहा करो, रहना नहीं रहना ना, नहीं रहना, धर्म से जुड़े रहना। धर्म यानी क्या, धर्म यानी क्या, किससे जुड़े रहोगे? धर्म यानी सम्यक दर्शन, जीवन में सम्यक दर्शन से जुड़े रहो, उसको निर्मल रखो, निर्दोष रखो, उसमें दोष लगने न दो। सम्यक तो धर्म है। ज्ञान से जुड़े रहो, सदा स्वाध्याय करते रहो। स्वाध्याय करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहो। स्वाध्याय से ही धर्म का ज्ञान होगा, और धर्म स्वाध्याय से ही आता है, नहीं तो केवल बाहर क्रियाकांड मात्र शेष बचती है। महावीर भगवान का दिन, निर्वाण का दिन आया, लाडू चढ़ाने के लिए आ गए। वो भी कैसे आ गए, घर घर में नोटिस ले जाना पड़ा, सिग्नेचर ले आना पड़ा, मैं आ रहा हूं कल। स्वयं तो होश में रहते ही नहीं, कल निर्वाण है, निर्वाण का दिन है, मुझे जाना चाहिए। अपनी भक्ति से तिथि दर्पण होता है कि नहीं घर में, उसके होते हुए ये रजिस्टर की जरूरत क्या है, जो घर घर घुमाए और आ रहे क्या नहीं आ रहे, बुलाना पड़ रहा है तुम लोगों को घर मंदिर धर्म करने के लिए, नहीं ये बहुत गलत है। धर्म के लिए बिना बुलाए आना चाहिए। दिन की प्रतीक्षा होती है, किस दिन निर्वाण है, निर्वाण दिन, ये एक तिथि दर्पण रखना चाहिए और उस दिन सामूहिक रूप से आकर के निर्वाण भक्ति निर्वाण पूजा करना चाहिए। आप लोग बुलाने पर आए क्या, ऐसे आए हैं, बुलाने पर क्यों आ गए आप लोग बताओ, बुलाने पर आए हैं ये लोग, मुझे मालूम है कि वो रजिस्टर गया है घर घर।
कंप्लेन करते उसके लिए
हर साल आते और हर साल ऐसे आएंगे, बिना बुलाने आएंगे, याद रख करके आएंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे वो हमको हमारे लिए मालूम नहीं था और हम नहीं आ पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ये ताजुब लगता है कि इस देश में इतना प्रमाद क्यों, धर्म के प्रति लगाव क्यों नहीं है। उत्तर भारत में तो भगाना पड़ता है, साधु आ जाए घर गांव में तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं जैसे गुड़ रखने के बाद मक्खियां वहीं आकर के गुड़ के ऊपर बैठ जाती, मक्खियों को हटाना पड़ता है ऐसा गुड़ के ऊपर से, फिर वहीं आकर के बैठ जाती और हटाना पड़ता है, फिर आ जाती है, मानती नहीं मक्खियां। गुड़ धर्म के समान है और दक्षिण की मक्खियों को क्या बोल रहे हैं, देखो दक्षिण की मक्खियों को गुड़ खा करके पता नहीं है। दक्षिण में गुड़ तैयार होता है, दक्षिण में भीतर का गुड़ तैयार नहीं होता, बाहर का गुड़ तैयार होता है और ये जाता है उत्तर में। यहाँ का बाहर का गुड़ तो उत्तर में जाता है और अंदर का गुड़ तो उधर से इधर आता है, धर्म वहां से यहाँ आया है। यहाँ पर इस देश में एक भी तीर्थंकर ने जन्म नहीं लिया, सारे 24 तीर्थंकर उत्तर भारत में जन्मे और सारे साधु दक्षिण में जन्मे। यहां से साधु गए और वहां से यहां तीर्थंकर आए, आदान प्रदान हुआ। तीर्थंकरों को ऐसे साधु कहीं नहीं मिले और ऐसे साधुओं को तीर्थंकर कहीं नहीं मिले उत्तर जैसे, ऐसा हुआ। ये प्रकृति नियम है, ये प्रकृति की कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ये सतत परिवर्तनशील रहते हैं। इस परिवर्तन में क्या क्या किस प्रकार की कितनी कितनी विशेषताएं हैं, क्या क्या चमत्कार हैं, जादू हैं, पता नहीं चलता कि प्रकृति का रहस्य बहुत गहरा रहस्य अनंत है। सफरचंद के फल के, सफरचंद बोलते एप्पल एप्पल, वो पेड़ इधर नहीं उगते, उत्तर में ही उगते हैं, कश्मीर में ही उगते हैं और उधर से इधर सब जगह आते हैं और उधर गन्ना नहीं उगता, इधर का गन्ना उधर जाता है, एप्पल कितना प्रसिद्ध फल है, हर दुकान में, बाजार में, हर गांव में एप्पल मिलता है, कितनी मात्रा में उगाते होंगे। और शक्कर उधर हर घर में मिलता है, हर गांव में मिलता है, कितनी मात्रा में इधर गन्ना उगाते होंगे। दोनों बातें हैं, इधर का माल उधर जाता है और उधर का माल इधर आता है। दक्षिण में जैन धर्म आया साधुओं से नहीं, तीर्थंकरों से आया। तीर्थंकरों ने जो सृष्टि का उपदेश दिया था, साधुओं ने सुना और उन साधुओं के माध्यम से ही दक्षिण में तीर्थंकरों का धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तीर्थंकर एप्पल के समान है। और यहां साधु यहां से जो गए वो किसके समान, वो गुड़ और शक्कर के समान है। माननी की कर्जी काई भी इधर से गई, उधर नहीं था, कर्जी काई जानती नहीं छो, वो शक्कर के बिना बनेगी कैसी चीज, वो तरगा तो बन सकता है, हरभरा वहां है लेकिन गन्ना नहीं है। दक्षिण स्वीट बांटता है, उत्तर अमृत बांटता है, उत्तर श्रेष्ठ है, हमेशा श्रेष्ठ ही रहेगा। वो धर्म अमृत के समान है, शक्कर एक स्वीट है, बाहरी वस्तु है। 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। 30 साल तक लगभग उन्होंने अपने जीवन में सर्वत्र विहार करते हुए धर्म की देशना, भव्य जीवों की प्रतीति, भव्यों का कल्याण किया। वास्तविक अनंत सुख का मार्ग बताया, वह मार्ग उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की देन है कि आज हमें पता चला कि निर्वाण भी कोई चीज है, निर्वाण कोई चीज है, आत्मा भी कोई चीज है। जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष इत्यादि सप्त तत्व हैं, ये 7 तत्व पता चल गए। मोक्ष भी कोई चीज है ये पता बाद में चला, तीर्थंकरों ने पता चलाया। और इस नश्वर काया के भीतर जो हमारी आत्मा रहती है उसको निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो सकती है उसका विवरण किया। हमने उनका उपदेश सुना, सुन करके अमृत पाने का मार्ग खोजा। जब कुछ भव्य जीवों को उस मार्ग को समझकर, उस मार्ग पर चल करके उसको जब प्राप्त किया तब पता चला कि ऐसा है ये, इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि विधान इस प्रकार का है। पता चला, पता चलने पर ही हम लोगों को ये पता चला, नहीं तो हम लोग केवल तरगा कर्जे का ही खाते थे, बैठते थे, सोते थे, उठते थे, यही बाहरी क्रियाएं ही चलती थी, धर्म का कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने अमृत पिलाया और उनके अमृत पिलाने के कारण से हमने स्वीट बांटा। देखिए आप, ऐसा ही हुआ क्या? नहीं, उन्होंने अमृत पिलाया और हमने स्वीट बांटा, बाहरी काम हमने किया, अंतरंग का काम उन्होंने किया। लेकिन जीवन जो मिलता है मनुष्य पर्याय अंतरंग के काम को करने के लिए मिलता है। बाहरी भोग वैभव तो अनादिकाल से मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे, उसकी कोई कमी कहीं भी नहीं रहती। कहीं भी जाओ, त्रिंच गति में भी इंद्रिय सुख है, देव गति में भी इंद्रिय सुख है, मनुष्य गति में इंद्रिय सुख है ही, एक नरक गति में इंद्रिय सुख नहीं है। बेचारा वो पाप कर्म का फल भोगता हुआ दुखी ही रहता है, वो कर्माहार करता है, हम कवलाहार करते हैं, देव लोग मांसाहार करते हैं, मांसाहार नहीं मानसिक आहार करते हैं, मानसिक मन से उत्पन्न होने वाला आहार। आज कौन सा दिन है? दीपावली का दिन। दीपावली शाम से संबंधित है किंतु निर्वाण सुबह से संबंधित है। आज निर्वाण दिन है, प्रातः काल में निर्वाण हुआ है भगवान महावीर को, और दीप जले थे शाम को। दीप जले थे गौतम गंधर्व के केवल ज्ञान होने के निमित्त से, और ये निर्वाण की पूजा हुई थी, ये लाड़ू चढ़ाया था। लाड़ू जैसा लग रहा है कि नहीं? ये लाड़ू ही है, निर्वाण लाड़ू इसका नाम है। इसको जरा अच्छे से समझा देता हूं। निर्वाण लाड़ू है, मुझे तीन चढ़ाया भगवान को, एक ही। ये क्या है? नारियल, लेकिन इसमें पानी है। ये क्या है? ये गोला, इसमें पानी नहीं है, बजता नहीं। ये क्या है? कोई नहीं बता पा रहे, आज ही चढ़ा रहे हैं इसलिए। क्या ये क्या है? इसका नाम है निर्वाण लाड़ू। निर्वाण लाड़ू का अर्थ बूंदी का लाड़ू, गरे लड्डू, क्या क्या बोलते हैं उनको, हाँ, बेसन लाड़ू, वो नहीं। वो सब नैवेद्य हैं, खाद्य हैं, खाद्य नैवेद्य, खाने की वस्तु है। ये प्रतीक का वस्तु है। लाड़ू जैसा दिखता है इसलिए निर्वाण लाड़ू कहा, प्रतीक है, प्रतीक होने के कारण से इसको लाड़ू नाम दिया। लाड़ू की तरह दूर से दिखता है, दिखता है कि नहीं? दिख भी रहा है, इसलिए इसका नाम लाड़ू रख दिया। लाड़ू जैसा लगता है इसलिए लाड़ू रख दिया। लेकिन निर्वाण का प्रतीक यदि कोई है तो यही है। निर्वाण का प्रतीक यदि कोई लाड़ू है तो यही है। वो बेसन का लाड़ू निर्वाण का लाड़ू नहीं बन सकता, वो बूंदी का लाड़ू बूंदी का निर्वाण लाड़ू का प्रतीक नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें वो गुण नहीं है जो इसमें है। वह प्रतीक वह नहीं बन सकता जो ये प्रतीक बन सकता है। आप देखिए, इसके साथ सारे जैन धर्म के सिद्धांत जुड़े हैं। कैसे कैसे जुड़े हैं ये क्रमशः बता देता हूं। इससे पहले क्या है? ये है, ये, इसके पहले ये है, इसके पहले ये है, ये ओरिजिनल है। इसके भीतर और कुछ होता है क्या? खोबरा भी होता है, खोबरे के अंदर पानी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस नारियल में पानी होता है उस नारियल में तेल होता है क्या? निश्चित है ना? जिस नारियल में पानी होता है उसको फोड़ करके तेल निकाल करके बता दो, नहीं निकलता। तेल कब बन जाता है इसमें? बिल्कुल पानी सूखने के बाद ही तेल बनेगा, पानी सूखने तक तेल नहीं बनता। और तेल की गंध आती है, इसको फोड़ेंगे तो सुगंध नहीं आती इसमें, पानी में से सुगंध नहीं आता। और इसमें जो पानी है वो देखिए, ये पानी जैसे कुएं का पानी होता है वो जैसा पानी है कि ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। इसको हम पानी कह सकते हैं क्या? पानी नहीं कह सकते, वो पानी है भी नहीं। वो पानी नहीं, वनस्पति का रस है जिसको हम पानी जैसा होने से पानी तो कहते हैं, लेकिन वो पानी नहीं, रस है। रस किसका रस? नारियल का रस। यदि पानी होता तो पानी पीने में वो भी वैसा लगना चाहिए और ये भी ऐसा ही लगना चाहिए, पर एक सा नहीं लगता। इसमें पानी के तत्व नहीं और पानी में इसके तत्व नहीं है, दोनों तत्व भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। क्या बता रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? क्या ऊंग रहे हैं? तुम लोग ऊंगते ही बैठ जाते हैं मौके पर। ये पानी, पानी का नारियल, इसके भीतर जब तक पानी रहता है तब तक नारियल को कच्चा माना जाता है। क्या पक्का? कच्चा नारियल। इस नारियल को कच्चा कहने के लिए इसके भीतर क्या होना जरूरी है? पानी होना जरूरी है। और जब तक पानी होता है तब तक कच्चा, जब तक पानी होता है तब तक कच्चा। पानी जिस दिन सूखेगा उस दिन यह पक्का बन जाएगा। तो देखिए जैन धर्म का पूरा तत्व कैसे जुड़ा हुआ है इससे, और कैसे हमने इसको निर्वाण का प्रतीक बना दिया, इसकी यात्रा देखिए। यहां से शुरू करता हूं। आपके पास टाइम है कि नहीं सुनने के लिए? कितना है अभी? कितना है? आधा घंटा तो ले सकते हैं ना? देखिए ये जो कठोर भाग ऊपर का, इसको कहते हैं कवच, ये शरीर के समान है। ये शरीर है और अंदर का जो खोबरा है वो आत्मा है, सफेद वो आत्मा है। और उसके भीतर जो पानी है वो किसका प्रतीक? वो अज्ञान, अज्ञान भाव, मिथ्यात्व भाव, रागादि भाव, ये तीन भाव, इनको भाव कर्म कहा है। ये दूषित भाव कहलाते हैं। अज्ञान आत्मा का दूषित भाव है, मिथ्यात्व आत्मा का दूषित भाव, प्रदूषित भाव है, और रागादि भाव यानी हम क्रोध, मान, माया, लोभ, चार प्रकार के कषाय करते हैं। कषाय भाव आत्मा के प्रदूषित भाव। जो जो आत्मा का भाव प्रदूषित होता है वह पर का होता है, स्व का नहीं रहता। वो अपना नहीं रहता, अपने में उत्पन्न होता है, लेकिन वस्तुतः देखो तो आत्मा के वे स्वरूप नहीं है, वे आत्मा के कहे नहीं जा सकते। पर के संपर्क से आए हुए भाव हैं वो। नारियल में जल बनता रहता है कब तक? जब तक कि यह पेड़ पर लटका है, तब तक पानी संग्रह होता है इसके भीतर। पेड़ से संबंध टूट गया तो पानी संग्रह होना बंद हो जाता है। ये रागादि भाव जो उसके भीतर जल रूप हैं, ये रागादि भाव कब तक रहते हैं ये देखना है। रागादि भाव कब तक रहते हैं? जब तक कि हम पर में उलझे रहते हैं, परिग्रह में उलझे रहते हैं, दूसरों के साथ संबंध रखते हैं और कहते रहते हैं कि मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, अशांत 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 अशांत, सारा जिंदगी अशांति में जा रही है। पर के संबंध से रागादि भाव होते हैं, पर के संबंध से अज्ञान भाव होता है, पर के संबंध से मिथ्यात्व भाव होता है। ये मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव, रागादि भाव आत्मा के भीतर जब तक रहते हैं तब तक आत्मा कच्चा माना जाएगा क्या पक्का माना जाएगा? कच्चा बोल रहे कि सच्चा बोल रहे? कच्चा माना जाएगा क्या पक्का माना जाएगा? कच्चा माना जाएगा। मिथ्यात्व से युक्त आत्मा कच्चा है, सच्चा नहीं। अज्ञान से युक्त आत्मा कच्चा है, सच्चा नहीं। कषाय युक्त आत्मा कच्चा है, सच्चा नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्या समझाएं? धर्म के तत्व तो बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। इस कच्चेपन को बाहर निकालने के बाद आत्मा सच्चा हो जाता है। आत्मा के भीतर क्या नहीं होना? अज्ञान नहीं होना। और क्या नहीं होना? मिथ्यात्व तो नहीं होना। और क्या नहीं होना? रागादि भाव। ये तीनों समाप्त हो गए तो आत्मा को कौन सी अवस्था प्रकट हो जाती है? मालूम नहीं। अरहंत अवस्था प्रकट होती है। कौन सी अवस्था? अरहंत अवस्था। अंदर में राग द्वेष मिथ्यात्व अज्ञान सब सूख जाए, ये तो जल भाग है। ये जल भाग रूप अज्ञान मिथ्यात्व कषाय भाव सब सूख जाए, इसके उपरांत आत्मा प्रासुक बन जाती है। अब किसी ने यहां कच्चा ला करके चढ़ा दिया है, गलत है ये, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। श्रीफल मोक्ष का प्रतीक माना गया है। मोक्ष का प्रतीक तो असली ये कहलाता है, ये निर्वाण का प्रतीक, मोक्ष का प्रतीक। कैसे उदाहरण घटाया? ये शरीर है बाहर का, समझ में आ रहा है? ऊंघना नहीं। ये बाहर का शरीर है, अंदर जो जल भाग है वो मिथ्यात्व राग द्वेष और अज्ञान भाव है। पहला जल भाग सूखता है। उदाहरण को ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया है। पहला जल भाग सूख जाता है। जल भाग सूखने के बाद खोबरा प्रासुक बन जाता है, उसमें एकेंद्री पना नहीं रहता। कच्चा खोबरा में एकेंद्री जीव हैं और उस पानी में भी एकेंद्री जीव हैं। ये दोनों ही प्रासुक नहीं माने जाते, जीव सहित माने जाते। जीव सहित वस्तु को चढ़ाना उचित भी नहीं है, क्योंकि ये प्रतीक माना गया है मोक्ष फल। मोक्ष फल प्राप्त ये बोलते कि नहीं? मोक्ष फल प्राप्त ये फलम निरुपामिति स्वात्। तो मोक्ष फल कैसा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए, जिसमें दोष नहीं रहना चाहिए। दोष का मतलब जीव नहीं रहना चाहिए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल पक्का होना चाहिए, अंदर सुगंधित होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा श्रीफल का, मोक्ष फल का लक्षण होता है। अंदर का जल भाग सूख जाए ये आवश्यक है, उसके बिना सुगंधित नहीं बनता। जल भाव सूखते ही सुगंधित बन जाता है और फिर तीन वस्तु रह जाती इसमें। क्या क्या रह जाता है जल भाग सूखने के बाद इसमें? खोबरा, सूखा खोबरा गोला, फिर ये कवच। कवच क्या है? शरीर। खोबरा क्या है? आत्मा। और उसमें जो सुगंधित तेल है वो क्या है? वो अनंत गुण का प्रतीक है। आत्मा अनंत गुणों से सुगंधित है, गुणों की गंध आती है उसमें, गुणों की गंध आती है। और यदि वह खोबरा सड़ जाए तो बदबू आ सकती है। और सड़ने वाला जो नारियल होता है सूखने के बाद कभी सड़ता नहीं, देखना, सूखने के बाद कभी सड़ता नहीं। और सड़ना हो तो उसमें कहीं कच्चा अवस्था में कोई डिस्टर्ब हो गया हो, बाहर की वायु अंदर थोड़ी सी भी चली गई हो तो नारियल सड़ जाएगा। सड़ जाएगा वो निश्चित रूप से, और सिर्फ चढ़ाने लायक नहीं रहता। अंदर की थोड़ी सी भी वायु अंदर गई तो वह नारियल खोबरा नहीं बनेगा, वो जल उसको सड़ा देगा खोबरे को। कच्चा खोबरा भी कच्चा रहता है और जल तो कच्चा है ही, वो सड़ा देता है। प्राकृतिक रूप से भीतर ही भीतर पानी पानी वह सूख कर खोबरा बन जाए, फिर खोबरे से उस पानी सूखने के बाद खोबरे के भीतर वो तेल के कण उत्पन्न हो जाए, वो सुगंधित जो तेल है उसका नाम है केवल ज्ञान। सुगंधित वस्तु केवल ज्ञान है, उसको अनंत ज्ञान कहो, अनंत दर्शन कहो, अनंत सुख कहो, अनंत वीर कहो। आठ कर्मों के अभाव में आठ गुण प्रकट होते हैं और ये आठों गुण तेल के समान है। खोबरा आत्मा के समान हुआ, तेल वो गुणों के समान हुआ, और ये कवच शरीर हुआ। जब तक अरहंत अवस्था में रहते तब तक उनका शरीर होता है, अरहंतों का शरीर है, और फिर उनमें केवल ज्ञान भी होता है। अरहंत भगवान किस प्रकार से हैं? इसमें जल नहीं, इसमें जल नहीं, कवच है, खोबरा है, तेल है, तीन चीजें हैं। कवच है, खोबरा है, तेल है, ऐसे अरहंत भगवान है। अरहंत भगवान को जब हम श्रीफल चढ़ा रहे हैं तो उनके प्रतीक के रूप में चढ़ाना चाहिए। तो उनका प्रतीक नारियल तब बनता है जब इसमें क्या ना हो, पानी ना हो। अरहंत भगवान को जब नारियल चढ़ाते हो ना उस समय कवच भी होना, खोबरा भी होना, लेकिन क्या नहीं होना, पानी नहीं होना। ये अरहंत का प्रतीक है। अरहंत फल प्राप्त ही श्री फल श्रेष्ठ फलम निरूपामी स्वाहा। समझ में आया अरहंत को क्या चढ़ाना चाहिए और कैसा होना चाहिए प्रतीक? प्रतीक ही तो है, चावल भी प्रतीक, श्रीफल भी प्रतीक, गंध भी प्रतीक, जल भी प्रतीक, धूप भी प्रतीक, दीप भी प्रतीक। प्रतीक तो बना करके तो चल रहे हैं हम, लेकिन इसके पीछे अरहंतों के कुछ गुणों को जोड़ करके उसको प्रतीक माना है। उस प्रतीक को हम चढ़ाते हैं, अरहंत को खाने के लिए नहीं। अरहंत नारियल खाएंगे क्या? हाँ? सिद्ध भगवान खाएंगे क्या? भगवान आप मोक्ष गए, हमारा लड्डू ले जाओ, ऐसा क्यों चढ़ाते हैं लाडू? केवल एक प्रतीक है। आज भगवान को मोक्ष हुआ, हम प्रतीक फल चढ़ाएंगे। तो प्रतीक फल इसमें प्रतीक बनाया, क्या क्या बनाया, सिद्ध भगवान का शरीर भी नहीं होता, सिद्ध भगवान में राग द्वेष आदि भाव भी नहीं होते, और सिद्ध भगवान में आटो कर्म भी नहीं होते। तो आटो कर्म का प्रतीक क्या था, ये देखो इसका कालापन, ये कर्म का प्रतीक है, काला है, कर्म काले ही होते हैं और काला ही फल देते हैं। काला शिक्षा, काला पानी का शिक्षा जो दे रहे हैं हमें संसार में, वो कर्म ही दे रहे हैं। ये कालापन घाती आघाती कर्म का प्रतीक है, और सिद्ध भगवान अंत में कौन से कर्म को नष्ट करके मोक्ष गए, घाती कर्म को, ये आघाती कर्म को, आघाती कर्म इसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। इसके भीतर जो खोबरा है वो असली आत्मा है, ये भी वस्तुतः आत्मा नहीं बन सकता, ये भी आत्मा नहीं, कालापन, कालेपन को उतार दिया। कई लोगों ने ऐसा लाडू लाए हैं जिसके भीतर कालापन चिपका हुआ है, वो नहीं चलेगा, प्रतीक नहीं बन सकता वो। जरा भी काला धब्बा इसके ऊपर हो तो देखो, एक कर्म का, आघाती कर्म का परमाणु चिपका हुआ है, तो क्या सिद्ध भगवान मोक्ष जाएंगे? पूर्ण नष्ट करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके चले जाते हैं? और प्रतीक बना रहे हैं तो सिद्धों का प्रतीक बना रहे हैं, इसमें आत्मा और सुगंधित तेल दो ही बचे। आत्मा सफेद है और सुगंधित तेल वो गुण है, आठ गुण, आठ कर्मों के अभाव से उत्पन्न आठ गुण है, आठ गुण और यह आत्मा दो ही तो चले गए मोक्ष, इसलिए इसको प्रतीक बनाया है निर्वाण लाडू के रूप में। और लाडू इसलिए इसका नाम रख दिया, दूर से दिखता है लाडू के समान, इसलिए लाडू बता दिया। और बेसन के लाडू में ये चिंतन नहीं है, बन ही नहीं सकता, वो नैवेद्य है, नैवेद्य शक्कर से बनता है, आटे से बनता है, वो आटे में क्या चिंतन करोगे? अब देखो ये गोला, ये देखो ये गोला, ये वाला, ये देखो ये गोला, इसमें जब था तब वह चिपका रहा, इससे इससे चिपका रहा, जब वह और सूख गया तो अपने संबंध को छोड़ देता है। फिर ऐसा बजाएंगे तो पानी बजता है कि गोला बजता है? गोला बजता है। ये गोला बजना अरहंत भगवान का प्रतीक है, ये अरहंत को चढ़ाने के लायक हो गया, जो बज रहा है प्रासुक है, दोष मुक्त है। पानी सारा का सारा दोष माना जाता है, वो सूख गया तेल बन गया, ये निर्दोष माना जाता है। अरहंत को चढ़ाना हो इसके साथ चढ़ाना चाहिए। और ये जो है इसके ऊपर कालापन, ये तो आघाती कर्म है, ये तो अंदर है ही, शरीर है, और वो जो कालापन है गोले के ऊपर वो आघाती कर्म है, ये दोनों हैं। लेकिन वो है क्या? पानी, पानी नहीं है। बज रहा है क्या? नहीं बज रहा है। अरहंत भगवान शरीर से निर्मोही रहते हैं, बजते, और जो शरीर से चिपके रहते हैं तब तक मोह रहता है। जब तक उस गोले में कच्चापन रहता है, जलभाग रहता है, तब तक चिपका रहता है। और पूरी तरह से वह जलभाग जब सूख जाता है तो थोड़ा सा सुकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, तो शरीर का संबंध छोड़ देता है, तब वो बचने लगता है, बजने लगता है। जब यह बजने लग जाए तब समझ लेना बिल्कुल दोष मुक्त हो गया है श्रीफल, उसमें जीव एक इंद्रिय जीव नहीं, क्योंकि कच्चापन नहीं। जब तक कच्चापन है तब तक जीवों का होना संभव है, और जब तक कच्चापन निकलता है तब वह निर्दोषता को प्राप्त हो जाता है, निर्दोष बन जाता है। अब वो निर्दोष हो गया, निर्दोष उस गोले को, इसको तो मोक्ष फल कह करके चढ़ा दिया अरहंत अवस्था में। मोक्ष फल तो यही है, निर्वाण इसी से प्राप्त होगा, इसके भीतर है मोक्ष। सिद्ध भगवान बैठे हैं किन शरीर में हैं, और जो आघाती कर्म है उसके भीतर वह आत्मा है, भीतर वह आत्मा शुक्ल धवल वर्ण वाली आत्मा बैठी हुई है, सुगंध पना भी उसमें है। लेकिन जब तक ये ऊपर के कवच को विसर्जित नहीं करेगा, भीतर के कालेपन को विसर्जित नहीं करेगा, तब तक वह सिद्ध आत्मा नहीं बनेगा। तो सिद्ध आत्मा कौन, ये तो अरहंत आत्मा हो गई। ये कवच को उतार दिया, लेकिन ध्यान रखना 14वें गुण स्थान में जाने वाले, मोक्ष को जाने वाले वो जो जीव है, आत्मा है, वह ऊपर के कवच भाव को और काले को, काले भाव को एक साथ उतार देता है, इसको फोड़ देता है, शरीर ठब हो जाता है, जैसे पटाखे फोड़ते हैं। ये शरीर, इसकी आवाज आती है, इसका ठब आवाज आती है, क्यों, इसको वो निकाल रहे थे, ऑपरेशन भीतर से हो रहा था। इस काले आघाती कर्म को हटाते समय ये हट गया पूरी तरह से तो ये टिक नहीं सकता, ये भीतर से हटाते समय ये भी फूट जाता है और ये जो सफेद गोला है वो रह जाता है ये, और ये मोक्ष को जाता है, इसलिए इसको निर्वाण लाड़ू माना है। समझ में आया, निर्वाण लाड़ू के दिन यही चढ़ाया जाता है, इसमें पूरी तरह से सिद्धांत घटित होता है, इसलिए इसको निर्वाण लाड़ू माना। हर साल क्या चढ़ाएंगे, यही चढ़ाएंगे ना, क्या बेसन के लाड़ू खिलाएंगे, भगवान लाड़ू नहीं खाते और न ही इसको ले जाते, परंतु आप किस लिए चढ़ा रहे हैं, किस लिए चढ़ा रहे हैं, प्रतीक माना है, और इस प्रतीक को सामने रख करके हे भगवान मेरी आत्मा भी ऐसे ही बन जाए, इसलिए मैं इसको अर्पित कर रहा हूँ, किस निर्वाण के प्रतीक के रूप में ऐसी शुद्ध आत्मा मेरी बन जाए और मेरे पास आत्मा और गुण भर रह जाए, इससे बढ़कर के कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, ये कर करके प्रतीक के रूप में इसका अर्पण किया जाता है। समय आपका 9:45 हो गया, अब ज्यादा समय तो लेना उचित नहीं, क्योंकि मन उधर भी रहता और इधर भी रहता, आपका चंचल रहता है, वो मानता नहीं, वो महाराज क्या ऐसे खींचते रहते प्रवचन, ऐसा कहता है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कह रहा है कि नहीं, सच बोलो झूठ मत बोलो कहता ही रहता है मन। तो निर्वाण महोत्सव आज आपने मनाया, भगवान महावीर सुबह प्रातः काल में, गो धूली काल में, सूर्यास्त संधि काल में, मतलब सूर्यास्त होने को था उस समय निर्वाण को प्राप्त हुए, उनके लिए निर्वाण लाड़ू चढ़ा करके सिद्ध भक्ति पढ़ करके नमस्कार भी करना चाहिए और अष्टक भी करना चाहिए। सिद्ध आत्मा को आपने आज अर्घ्य चढ़ाया, किस आत्मा को, सिद्धों की पूजा की ना, 8 कर्म मुक्त भगवान महावीर की पूजा आज आपने की है, और ऐसे महावीर बनने के लिए पूजा की है, हमको इससे बनना है, इसलिए ये सब कुछ नाटक किया, वहां से आए यहाँ, रोज तो नहीं करते, एक दिन तो नाटक करेंगे, हम नाटक करने आए, लेकिन ये क्रियाएं मजबूरी में नहीं करना, ध्यान रखना, आना पड़ रहा है ऐसा नहीं होना। जिनके दिल में ये लगता है कि ये तो आना पड़ता है, जाना पड़ता है, रजिस्टर आ गया, सिग्नेचर करना पड़ता है, मंदिर जाना पड़ता है, मूर्ख हैं वो, कुछ नहीं जानते, वो महामूर्ख हैं। जो धर्म को मजबूरी से करता है, आत्मधर्म अपने ही आत्मधर्म को मजबूरी में करता है, वो जीव मूर्ख होता है। मूर्ख मूर्ख हूं ना, उसको मूर्ख कहना चाहिए कि शाना कहना चाहिए? तो कुछ तो टाइटल दे देता हूं मैं, ताकि समझ जाए कि मेरे में कितनी मूर्खता है, जो मैं धर्म अपने वास्ते अपने लिए अपने रुचि से अपने समर्पण भाव से नहीं कर पाता, ये कितनी मूर्खता है, ऐसा विचार आना चाहिए। दक्षिण और उत्तर में यही अंतर है, मुझे बार बार दिल को लगता है। ये मूर्खता बहुत जमी हुई है यहाँ कि धर्म को रुचि से नहीं करते, समर्पित होकर के नहीं करते, करते हैं लेकिन क्रियाकांड रूप में करते हैं, आना पड़ता है। दीपावली आ गई तो चलो लाडू चढ़ा करके आएंगे, दर्शन करके आएंगे। महावीर जयंती आ गई तो चलो साल भर में एक बार तो जाना ही पड़ता, जाने पड़ता है इसलिए आते हैं। नहीं, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। ये भयंकर अंधकारमय जीवन है, अमावस्या का जीवन है ये, ऐसा नहीं। धर्म के लिए सतत जागृत, अष्टक रोज करना चाहिए, देव दर्शन रोज करना चाहिए। कितने लोग मंदिर आते हैं रोज? रोज आने वाले कितने लोग हैं? और नहीं आते हैं वो लोग क्यों नहीं आते? दिमाग नहीं है क्या उनके पास आत्मा का हित करने के लिए? ज्ञान नहीं, आत्मा नहीं शरीर में है आत्मा, तो मोक्ष किसके किसके लिए मिलने वाला है? भगवान को मिलने वाला, आपको मिलने वाला है, तो क्यों नहीं आते मंदिर? बहुत गलत बात है। जो मंदिर आए बिना खाना खाता है वो अपराधी है, महान अपराधी। खाना रुचना नहीं चाहिए, भगवान का दर्शन किए बिना, गुरुओं के दर्शन किए बिना कैसे खाते हो तुम लोग? कैसे खाना रुचकर लगता है? देव शास्त्र गुरु का दर्शन नहीं किए और खाना खा रहे, कितने अपराधी है, महाअपराधी है। नित्य देव शास्त्र गुरु का दर्शन होना चाहिए। गुरु आए हैं तब दर्शन नहीं करते, अब जाने के बाद क्या करेंगे? गुरु गांव में बैठे हैं, दर्शन नहीं करते, ये देखो मूर्खता। और दुकान में फोटो लगाए हुए दर्शन करते, और साक्षात है उनके दर्शन नहीं करते। इसको कहते हैं दक्षिण का अंधकार। कुछ सुधार करोगे? गांव में गुरु है तो दर्शन कर लेना चाहिए, कोई नहीं दिखते। मुझे लगता है मंदिर में भी शायद ही आते हूं, सोना सोना। गुरु गांव में है, उनका दर्शन नहीं करते, कैसे श्रावक, कैसे जैनी? कोई कीमत नहीं आपकी। बुरा लगता है कि नहीं? लगना चाहिए। ये अंधकार है, अमावस्या है ये, इस अमावस्या को दूर कर लो अपने जीवन से। ये संस्कार ठीक नहीं, ये दुस्संस्कार है, बुरे संस्कार हैं, ये आए हुए हैं, ये अनादिकाल से आए हुए हैं, इनको दूर करना चाहिए। गुरु जब आते हैं तो देव शास्त्र गुरु, मैं उसको कह रहा हूं सच्चे देव शास्त्र गुरु का दर्शन करना, ये नियम दे रहा हूं। नियम तो ये होना चाहिए, नकली देव का भी नहीं, परिग्रही हो। नकली गुरु का भी नहीं, परिग्रही हो। उनका नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु आते हैं तो आपको दिल में ये नहीं लगता कि दर्शन करना चाहिए? ये नहीं लगता माता पिता को कि अपने बच्चों को भी ले जाकर के दर्शन कराएं? लेकिन ये तो हम नहीं देख रहे हैं, लगता तो है लेकिन आते नहीं। ये कहना पड़ रहा है, संस्कार देने पड़ रहे हैं, ये अमावस्या है, अंधकार है, इसको हटाना पड़ रहा है। दर्शन की बातें सिखाना नहीं पड़नी चाहिए, कॉमन बातें हैं ये, धर्म की प्रारंभिक बातें हैं। देखिए कई तो कैसा परिवर्तन आएगा। शाम को गौतम स्वामी मोक्ष गए, शाम को शायद आप लोग दुकान में पूजा करते क्या? पूजन कहाँ करते? दुकान की पूजा कब होती? दोपहर को करते, शाम को ही करते। तो रात में अष्टक नहीं होता, पूजन दिन में ही करना चाहिए। अष्टक करना हो दिन में करो, आरती करना हो तो संधि काल में करो, आरती होती है संधि काल में, पूजन रात को नहीं होता, अष्टक रात को नहीं होता। अगर देव शास्त्र गुरु फोटो है, फोटो को रख करके करना चाहिए। कौन सा फोटो मालूम है कि नहीं? कौन सा फोटो रखना चाहिए? देव शास्त्र गुरु वाला फोटो सबको मिला है? कितने लोगों को मिला, हाथ उठाइए। देव शास्त्र गुरु वाला फोटो, दीपावली निर्वाण की भी एक फोटो छपा है, कितने लोगों को मिला है? बहुसंख्यक लोगों को नहीं मिला है। क्या पूजा करेंगे आप लोग? किसको रख करके करेंगे? महावीर भगवान का फोटो है कि नहीं घर में? उसको रखो, और उसके सामने एक जिनवानी शास्त्र रखो, तत्वार सूत्र छेड़ा कोई भी एक शास्त्र रखो, और अष्टक करो। शाम को अष्टक किया जाता है, और क्योंकि गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसके प्रतीक के रूप में घृत दीप जलाया जाता है, घी का, तेल का नहीं। क्या कहा? तेल का नहीं, घी का, घी का दीप जलाया जाता है। घी का दीप जलाया जाता है, प्रतीक है। कितने दीप जलाए जाते? केवल ज्ञान का प्रतीक, केवल ज्ञान एक ही होता है, दो नहीं होते। एक घृत दीप जलाया जाता है देव शास्त्र गुरु का। आप द्रव्य पूजन भले ही ना कर सके, लेकिन कम से कम भाव पूजन तो पढ़ ही लेना चाहिए, पूजा पाठ तो पढ़ करके करना चाहिए। द्रव्य पूजन करना श्रेष्ठ है। अगर नहीं कर पाते ऐसी परिस्थिति में, अष्टक का पाठ तो पढ़ना ही चाहिए। तो किस तरह से मनाए? वहां पर लाड़ू चढ़ाने का कोई प्रयोजन नहीं। लाड़ू किसके लिए चढ़ाया? निर्वाण लाड़ू महावीर भगवान के मोक्ष के उपलक्ष्य में चढ़ाया, और शाम को जो दीप जलेगा वो हमारे मेन गुरु, प्रथम गुरु गौतम गंधर्व, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष नहीं गए थे, वो अरहंत अवस्था पर आए थे। महावीर भगवान सिद्ध अवस्था पर निकल गए, और गौतम गंधर्व मुनि अवस्था में थे, वो अरहंत अवस्था में आ गए थे। तुमको केवल ज्ञान हो गया था, केवल ज्ञान के प्रतीक के रूप में दीप चढ़ाया जाता है, और हो गया। ये है दीपावली मनाने की पद्धति। हमने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला, उसको ध्यान रखें और प्रतिवर्ष आनंद के साथ मनाएं, और नित्य देव शास्त्र गुरु का दर्शन करें।